ओम शांति। सभी कहेंगे एक साथ मेरे बाद ओम शांति। आप सभी शांति प्रिय आत्माएं हो ना, सभी आध्यात्म प्रेमी आत्माएं हो ना, क्योंकि सभी की यही चाह है कि जीवन में शांति मिले, प्रेम अनुभव हो, खुशी मिले। तो ये सब कैसे आएगा? आध्यात्मिकता के द्वारा। तो इसी विषय को लेकर मीडिया कर्मी क्या सहयोग दे सकते हैं जिससे शांति और सद्भावना विश्व में आ जाए आध्यात्मिकता के द्वारा, क्योंकि वही एकमात्र मार्ग है। बाकी लोगों ने तो बहुत कोशिश की कि दुनिया में शांति आए, लेकिन सारी कोशिशें लगभग फेल हो चुकी है। अब एक ही कोशिश है, वो है आध्यात्मिकता, जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सिखाई जाती है। तो मेरे तरफ से भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आध्यात्मिकता हम किसे कहते हैं? इस शब्द में ही अर्थ समाया हुआ है। आध्यात्मिकता अर्थात जिसमें आत्मा का अध्ययन होता है। सिंपल शब्दों में इसकी परिभाषा, अध्यात्म आत्म शब्द आता है, तो आत्मा का अध्ययन, ये है आध्यात्मिकता। और आत्मा का अध्ययन अर्थात अपने भीतर में झांकने का रास्ता, खुद को पहचानने का मार्ग। और जब खुद को पहचान लेंगे तो फिर ईश्वर को पहचानना मुश्किल नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है सेल्फ रियलाइजेशन लीड्स टू गॉड रियलाइजेशन। फर्स्ट स्टेप इज सेल्फ रियलाइजेशन, खुद को पहचान। तो आध्यात्मिकता हमें हमारी सच्ची पहचान देती है, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं इस जगत में। हम सब कहीं से आए हैं ना, हम यहीं के तो नहीं हैं, क्योंकि इस दुनिया को कहा ही जाता है ये संसार एक मुसाफिर खाना है। हम दो दिन के मेहमान हैं, तो मेहमान तो जरूर कहीं से आता है। और फिर ये भी कहा जाता है ये संसार एक रंगमंच है, विश्व स्टेज है। तो विश्व स्टेज पर हम सभी एक्टर्स हैं, तो एक्टर्स का अपना घर तो कहीं और होगा, लेकिन वो मंच पर आकर के अभिनय करते हैं। तो हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, क्या है जीवन का लक्ष्य, कहाँ जाना है, मेरी मंजिल कौन सी है, मेरा ठिकाना कौन सा है, आज मनुष्य इन सब बातों से अनभिज्ञ हो गया है। इसलिए गीत भी बनाते हैं ऐसे, कहाँ तेरी मंजिल, कहाँ है ठिकाना, मुसाफिर बता दे कहाँ तुझको जाना। मुसाफरी लंबी है इसलिए घर भूल गया है। लेकिन आध्यात्मिकता हमें उस घर की भी याद दिलाती है। तो सबसे पहले खुद को पहचानना इस आध्यात्मिकता के मार्ग पर बहुत जरूरी है कि आखिर राही कौन है, मंजिल किसको चाहिए, हम क्या ढूंढ रहे हैं। तो इन सब प्रश्नों का हम आध्यात्मिकता से उत्तर लेंगे और इसी को ही वास्तव में हम योग कहते हैं। योग केवल कुछ शारीरिक क्रियाओं का दूसरा नाम नहीं है, योग तो हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। जीवन तो सभी जीते हैं, जो श्वास लेता है वो जीवन जीता है, उसमें कीट पक्षी जीव जंतु पक्षी जानवर सब आ जाते हैं, इंसान तो है ही, तो सब जीवन जीते हैं। लेकिन श्वास लेना ही सब कुछ नहीं है ना, वो जरूरी है मानते हैं, लेकिन यही तो सब कुछ नहीं है। आज एक इंसान बिल्कुल वेजिटेबल की तरह पड़ा है या मानो वो कोमा में है या एकदम जैसे लाइफ सपोर्ट पर है, वो भी जीता है, लेकिन ये तो जीवन नहीं है ना। जीवन तो तब माना जाए जब शांति हो, प्रेम हो, सुख हो, खुशी हो, भाईचारा हो, सद्भावना हो, दया हो, रहम हो, एक दो के प्रति भावनाएं हो। सद्भावनाएं बहुत जरूरी है। तो ये सब अगर जीवन में है तो जीवन एक वरदान है, प्रभु देन है, इसलिए मानव जीवन को हीरे तुल्य माना गया है। लेकिन कहीं हम इसे कौड़ी के बदले तो नहीं गंवा रहे हैं, हम अपने आप से पूछें। क्योंकि अगर जीवन में दुख है, अशांति है, कष्ट है, रहम का अभाव है, दया धर्म कुछ नहीं है, लड़ाई झगड़े मारामारी ईर्ष्या नफरत दुश्मनी ये सब बातें हैं, तो जीवन तो एक अभिशाप है, इट्स अ कर्स, इट इज नॉट अ ब्लेसिंग। तो अगर हम चारों ओर नजर घुमाएं तो आज हर एक यही कहता है क्या करें, टेंशन है, स्ट्रेस है, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम्स की लिस्ट उनके पास तो तैयार ही है। तो क्या यही जीवन है? अवश्य नहीं। और भगवान ने हमें इस दुनिया में इसलिए नहीं भेजा है कि तनाव में ही सारा दिन रहो, दुख अशांति अनुभव करो, क्योंकि परमात्मा के हम सभी बच्चे हैं। हर एक पिता चाहता है कि मेरे बच्चे सुखी रहे, तो परमात्मा भी तो हमसे यही चाहते हैं। लेकिन क्या कारण है कि हम ऐसे दुखी हो गए, और क्या कभी ऐसा समय था जब सचमुच दुनिया में इतना सुख शांति ये सब कुछ था, या कभी था ही नहीं? ये भी एक प्रश्न है। कभी था ही नहीं तो इसके विषय में सोचेंगे भी नहीं कि हो, और अगर कभी था तो जरूर सोचेंगे ये फिर से कैसे आए। तो आध्यात्मिकता और उसमें योग एक ऐसा मात्र आधार है जिससे हम अपने जीवन को फिर से पहचानने लगते हैं और जीवन जीने की कला सीख लेते हैं। तो क्या है योग? अगर हम योग की भी परिभाषा लें तो भी आज दुनिया में इतने सारे मंतव्य है योग के बारे में, योग के बारे में इतनी विचारधाराएं हैं, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट आज हम चारों ओर देखते हैं। कई स्थानों पर योगा स्कूल खोले गए हैं, और अगर हम वहां जाकर देखते हैं तो योग के नाम पर केवल आसन प्राणायाम सिखाए जाते हैं, पर यही केवल योग नहीं है। योग वास्तव में जब इसकी गहराई में जाते हैं तो अष्टांग योग का वर्णन आता है, राज योग का वर्णन आता है। और अष्टांग योग में तो 8 अंग बताए जाते हैं योग के, यम और नियम, ये तो सबसे पहले अंग है। जीवन में नियम बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन्स, प्रिंसिपल्स, और फिर उसके बाद आसन और प्राणायाम। लेकिन उसके बाद जो 4 और बातें हैं, जिसमें प्रत्याहार, गोइंग इनवर्ड्स, ध्यान, एकाग्रता, धारणा, उसका वो स्वरूप बन जाना, और फिर समाधि, सम हो जाना, ईश्वर के सम हो जाना, समान हो जाना, ये बहुत ऊंची बातें हैं और वो सब योग के ही भिन्न अंग हैं। लेकिन आज हमने योग शब्द का ही अर्थ गलत समझ लिया। योग को योगा कह करके हम पुकारते हैं और योगा कहने का अर्थ ही बताते हैं या आसन सिखाए जाते हैं। परंतु योग शब्द कहाँ से आया? अगर योग शब्द का ओरिजिन देखें तो संस्कृत के युज शब्द से आया है, योग, जिसका अर्थ होता है जोड़ना। किसी भी प्रकार के जोड़ को योग कहा जाता है और बिछड़ने को वियोग कहा जाता है। दूर जाना, अलग होना, बिछड़ना, ये वियोग है, और उसकी भेंट में मिलना, जुड़ना, एक होना, ये योग है। लेकिन योग को अगर हम आध्यात्मिक रूप से ले तो ये तो बहुत ऊंचा है। योग के कई स्तर हैं, लेवल्स हैं। अगर हम देखें, एक लेवल है भौतिक, फिजिकल, चीजों को जोड़ते हैं या एनर्जीज को जोड़ते हैं। दूसरा अर्थ है मानसिक, मन से भी हम जुड़ते हैं किसी के साथ। और तीसरा अर्थ है आध्यात्मिक। अब जो फिजिकल बात है, भौतिक बात है, उसको तो हम सभी जानते हैं। भौतिक को समझना मुश्किल नहीं है, हम एरिथमेटिक करते हैं और एरिथमेटिक में हम चीजों को जोड़ते हैं और फिर जोड़ करके लिखते टोटल सम, और उसी को भी हिंदी में कहते कुल योग। कुल योग माना उनको जोड़ा और जो टोटल सम हुआ वो योग है। तो उस हिसाब से योग माना कोई भी जोड़। हम बिजली घर से तार जोड़ते हैं, वो भी एक योग है। लेकिन उसकी विधि क्या है कि अपने घर की जो बिजली की तार है वो पावर हाउस की तार से जोड़ने के लिए रबर को हटाना पड़ता है, तब हम कनेक्शन जोड़ सकते हैं और हमको बिजली मिलेगी। क्योंकि ये शरीर तो वो जो रबर है वो तो बैड कंडक्टर है, कॉपर टू कॉपर जोड़ना है तभी तो करंट आए। हम रेडियो ऑन करते हैं तो रेडियो ऑन करने से ही हमें कोई रेडियो स्टेशन नहीं मिल जाता, हमें ट्यूनिंग करनी पड़ती है। और ट्यूनिंग करने के लिए हमें पता होना चाहिए कौन सा मीटर बैंड है, कौन सा वेवलेंथ है, कौन सी फ्रीक्वेंसी है। वो अगर पता हो तो फट से हम अपनी सुई को वहीं रखेंगे और हम उस रेडियो स्टेशन की आवाज सुनेंगे। क्योंकि एनर्जी ट्रेवल्स, तो साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, ये सारी एनर्जीज ट्रैवल करती है और हमको उसका अनुभव होता है। तो इसीलिए ये भी एक योग है। तो योग वास्तव में समझना मुश्किल नहीं है। रेडियो की ट्यूनिंग भी एक योग है। हम बिजली घर से भी योग करते हैं तभी बिजली आती है। और तीसरा, जब दूध में हम चीनी मिलाते हैं वो भी दूध और चीनी का योग है और दूध मीठा हो जाता है। लेकिन उस योग के लिए भी दूध में चीनी डालने से ही मीठा नहीं होगा, हमको मिलाना पड़ेगा, चम्मच के साथ मिलाना पड़ेगा, नहीं तो नीचे की नीचे रह जाएगी चीनी, दूध मीठा नहीं होगा। तो कोई विधि है जिस विधि के द्वारा ये मिलन का अनुभव होता है, और उसी विधि के द्वारा जब मिलन होता है तब अनुभूति होती है। तो इसीलिए योग को समझना फिजिकली कोई बड़ी बात नहीं है, पर मेंटली भी हम देखें बड़ी बात नहीं है। हम किसी को याद करते हैं, वो भी एक योग है। आज मान लीजिए हम किसी व्यक्ति को याद कर रहे हैं, और जैसे ही उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, वो व्यक्ति उसी समय पहुंच जाता है, तो हम कहते हैं अरे क्या योग था मेरा। आपके बारे में हम अभी सोच ही रहे थे, याद ही कर रहे थे, आप आ गए, तो ये भी योग है, याद जो मन का काम है। और वो जो याद है वो चाहे कब की भी हो बात, वो सिचुएशन, वो परिस्थिति कोई अभी की ना हो, आज से 20 साल पहले कोई दुखद घटना हुई होगी आपके जीवन में मान लो, और आज अगर कोई उसकी याद दिलाए, तुरंत आपके चेहरे पर वो उदासी, वो दुख अनुभव होने लगेगा, जबकि अभी वो न घटना है, न वो परिस्थिति है, न वो व्यक्ति है, न वो स्थान है, सब बदल गया है, लेकिन आज भी किसी ने याद दिलाया और मन वो एक सेकंड में वहां पहुंच गया, और दुख की अनुभूति उसी वक्त होने लगती है। उसका ऑपोजिट सुखद घटना है, वो सुखद घटना भी जैसे याद आई तुरंत सुख की खुशी आ जाएगी आपके चेहरे पर, और आपसे कोई पूछेगा क्या बात है, मुस्कुरा रहे हो, क्या याद आ गया, जबकि उस समय तो कोई ऐसी बात है नहीं, तो कहेंगे कुछ बात याद आ गई, वो खुशी की बात थी। तो ये भी एक योग है, लेकिन जो आध्यात्मिक स्तर का योग है वो तो बहुत ऊंचा है, और उस आध्यात्मिक स्तर को ही हम राजयोग कहते हैं। तो आध्यात्मिक स्तर क्या अर्थ क्या है, आत्मिक स्थिति में स्थित होकर परमात्मा के साथ संबंध जोड़ना, ये आध्यात्मिक योग है, उसको हम राजयोग कहते हैं। क्यों राजयोग कहते हैं, क्योंकि ये योग हमें राजा बनाता है। अब राजा का मतलब क्या होता है, यू आर रूलिंग ओवर इट, पर किस पर हमें रूल करना है, किस पर राज्य करना है, किसी दूसरे पर राज्य नहीं करना है, लेकिन खुद पर राज्य करना है। तो कैसे हम इस पर राज्य करते हैं वो देखेंगे। किस पर राज्य, खुद पर राज्य का मतलब अपनी इंद्रियों पर राज्य। आज हम देख रहे हैं कि हमारी जो ये इंद्रियां हैं ये मन के ऑर्डर पर नहीं चल रही है, लेकिन मन इन इंद्रियों के ऑर्डर पर चल रहा है। जीभ रस, कन रस, स्पर्श रस, नेत्र रस, गंध रस, ये पंच इंद्रियां, पंच उसका कार्य, और वो जो पंच इंद्रियां हैं नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये तो ये सारी जो पंच इंद्रियां हैं ये मन के कहने पर नहीं चल रही है, पर मन इनके कहने पर चल रहा है। जहां जहां आंखें जाएगी तुरंत मन वहां गया, कुछ बात सुनी तुरंत मन गया, कानों में गया और तुरंत मन वहां पहुंच गया। जीभ रस, कोई चीज का स्वाद पसंद आ गया, तुरंत मन वहां गया। होना चाहिए मन इंद्रियों को अपने वश में रखे। इंद्रियां तो घोड़े की तरह है, मन उसका राजा है, और मन के ऊपर भी एक सत्ता है जिसको हम बुद्धि कहते हैं। इसीलिए कहावत है सोच समझ कर कर्म करो। ये इंद्रियां यूं ही कर्म कर ले तो बहुत नुकसान हो सकता है, इसलिए सोच समझ कर कर्म करो। कर्म करना ये थर्ड स्टेज है। पहली स्टेज है सोचना, क्या करना है, फिर उसको समझना कि ये अगर मैं करूंगा इसका नतीजा क्या होगा, परिणाम को सोचना, और अगर परिणाम अच्छा नहीं होगा तो वो कर्म नहीं करना। तब कहेंगे कि ये इंद्रियां हमारे वश में है, लेकिन बिना सोचे समझे हम कोई कर्म कर लेते हैं और वो गलत था, किसको थप्पड़ मार दी, गाली दे दी, अब वो चुप थोड़ी बैठेगा, हमने एक थप्पड़ मारी वो दो थप्पड़ मारेगा, न जाने उसका और नतीजा क्या होगा। और गुस्से का जो क्लाइमेक्स है वो तो बंदूक उठा के मार भी डालेगा, पता थोड़ी चलता, एक शब्द केवल मैंने कहा तो क्या परिणाम हो गया उसका, सोचो तो सही। तो सोचे समझे बिना मैंने कुछ भी कह दिया कर दिया, उसको कैसी ठेस पहुंची होगी, दुख पहुंचा होगा, वो थोड़ी सोचते हैं हम। तो इसलिए ये इंद्रियां हमें धोखा देती है और हम कई गलत काम कर जाते हैं। तो राजयोग पहले हमें अपनी इंद्रियों का राजा बनाता है, क्योंकि सोच समझ कर कर्म करते हैं, फिर उसके बाद मन का भी राजा बनना है। हम कई बार पता ही नहीं चलता हमें कि हम क्या सोच रहे हैं, क्योंकि हम जो सोचेंगे वही मुख से निकलेगा, वही कर्म होंगे, वही हमारा व्यवहार होगा, वही हमारी आदतें बनेगी, उसी अनुसार हमारा व्यक्तित्व बनेगा और उसी अनुसार हमारा भाग्य निर्धारित होगा। इसीलिए मन में भी हमें क्या सोचना है, कई बार जो हमें सोचना चाहिए वो तो सोच ही नहीं पाते हैं, और जो नहीं सोचना चाहते वही मन में सोच चलते रहते हैं। हम चाहते ये मैं नहीं सोचूं, लेकिन रोक नहीं पाते। और कई बार मैं ये सोचना है क्या था क्या था, लेकिन मन में वो बात आती नहीं है, तो मन भी हमारे वश में नहीं है। इसीलिए कह दिया मन तो बड़ा चंचल है, पापी है, दुष्ट है, नीच है, एक घोड़े की तरह है, बेलगाम होके दौड़ रहा है। तो इंद्रियां भी घोड़े की तरह, तो मन भी घोड़े की तरह, ऐसा ही है ना। तो राजयोग हमें इंद्रियों का तो राजा बनाता है, लेकिन मन का भी राजा बनाता है। हम जो सोचना चाहें, जो उचित है वही सोचे, नहीं उचित है तो नहीं सोचे। हम उसको एक फुल स्टॉप लगा दे, गाड़ी के अंदर भी ब्रेक है, बहुत जरूरी है आजकल पावर ब्रेक्स, इंस्टेंट स्टॉप। ये नहीं कि हमने ब्रेक यहाँ लगाई और जाके एक फर्लॉन्ग दूरी पर जाके गाड़ी रुकी, उसी वक्त रुकनी चाहिए, नहीं तो बहुत बड़े एक्सीडेंट्स हो जाते हैं अगर नहीं रोक पाई गाड़ी को, बहुत फास्ट स्पीड थी तो। इसलिए मन को भी अपने वश में रखना होगा, और फिर ऑटोमेटिकली कर्म इंद्रियां तो वश में आएगी। और जब इंद्रियां और मन वश में होंगे तो हमारे कर्म कितने श्रेष्ठ होंगे, और जब कर्म श्रेष्ठ होंगे तो हम सबका दिल जीत सकेंगे, क्योंकि दिल जीतना है सबका सबका। किसी को हराना ये बड़ी बात नहीं है। आज हथियारों के बल से, मसल पावर से हम किसको हरा सकते हैं, लेकिन उसको दिल, उसका दिल जीतना ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए कहा जाता है मन जीते जगत जीत। अगर आपने मन को जीत लिया तो उसका दिल भी आप जीत लेंगे, तो आप जगत जीत भी बन सकेंगे। आज तक किसी ने भी बाहुबल से, हथियारों के बल से दुनिया को नहीं जीता है, कभी नहीं जीता है। सिकंदर राजा ने बहुत कोशिश की, हिटलर ने बहुत कोशिश की, न जाने कौन कौन आए ऐसे ऐसे वो आए, लेकिन कोई नहीं जीत सका सारी दुनिया को युद्ध के बल से। लेकिन मन को जीता तो कहा जाता है मन जीते जगत जीत। और मन को जीतना माना मन को मारना नहीं, पर मन को ईश्वर की ओर मोड़ना, तब हम सबका दिल जीत सकेंगे और तब सारे विश्व को भी जीत सकेंगे। इसीलिए कहा गया है नर ऐसी करनी करे जो नर नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो नारी श्री लक्ष्मी बने। नर नारायण बन जाता है, मानव देव बन जाता है। तो ये मानव देव बन जाए ऐसा योग कौन सिखा सकता है भगवान के सिवाय। तो ये राजयोग का शिक्षक भी स्वयं परमात्मा है और वो हमें अपने साथ योग लगाने की शिक्षा देते हैं। इसलिए भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इस मन को मेरे में लगाओ। ये कौन कह सकता है, एक परमात्मा ही कह सकता है। तो राजयोग अर्थात उस परम सत्ता से योग, जिनसे ऊंचा कोई नहीं इस संसार में, उनसे मन की तार जोड़ना, और जो उसकी विधि है वो भी बहुत ऊंची है, छोटी मोटी ऐसा तरीका नहीं है, बहुत ऊंची विधि है, और उनसे जो प्राप्ति है वो भी सबसे ऊंची है। क्योंकि मनुष्य आज सफलता, सक्सेस शब्द की जो डेफिनेशन देते हैं ना, सबकी अपनी अपना अपनी अपनी डेफिनेशन है, लेकिन सच्ची सफलता हम किसको कहेंगे। जीवन में धन आ जाना, मान आ जाना, यश आ जाना, महिमा होना, मकान, गाड़ियां, बैंक बैलेंस, जो कुछ भी आज संसार में हम समझते हैं ये सफलता का आधार है, सब मिल जाए फिर भी जीवन सफल हो ये जरूरी नहीं है। क्योंकि जब उनसे पूछते हैं, अभी तो आपके जीवन में सब कुछ है, आपको क्या कमी है, तो कहेंगे बस अभी भगवान से यही मेरी प्रार्थना है, मुझे शांति चाहिए। तो सबसे बड़ी सफलता कौन सी है, कौन सी है, हा? जीवन में शांति हो, सद्भावना हो, प्रेम हो, दया हो, ये सद्गुण जीवन में आए तब सफलता है। अगर इन सद्गुणों की कीमत पर हम और चीजों को लेते हैं तो जीवन में कभी सफलता नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी, चाहे कितना भी कुछ मिल जाए। इसलिए परमात्मा हमें वो सफलता दिलाते हैं जिससे हमें वो आंतरिक प्राप्तियां जब होती है तो ऑटोमेटिकली बाहर की जो प्राप्तियां है ना, ये तो जैसे परछाई है, इनके पीछे पीछे नहीं जाना पड़ता है, ये अपने आप आपके पीछे पीछे आएगी। तो योग अर्थात संबंध और राजयोग अर्थात उस सर्वोच्च सर्वोपरि से संबंध, जिससे आत्मा को इतनी शक्ति मिलती है, जो हमारा जीवन एक वरदान बन जाता है, क्योंकि ये सब प्राप्तियां हमें राजयोग से मिलती है। परखने की शक्ति आती है, निर्णय लेने की शक्ति आती है, व्यवहार में शुद्धि, व्यक्तित्व में निखार, मनोबल में वृद्धि, ये सब हम चाहते हैं तभी तो सफलता है। शांति की प्राप्ति, पाप कर्मों से मुक्ति, एकाग्रता में वृद्धि, संबंधों में सुधार और आनंद की प्राप्ति। आनंद केवल इंद्रियों का अल्पकाल का सुख नहीं है, आनंद तो कहा जाता है सत्चित आनंद, सत्यानंद, प्रेमानंद, धर्मानंद, विवेक आनंद, आनंद जो विवेक से मिले, जो सत्यता से मिले, जो शांति से मिले, और सबसे ऊंचा आनंद परमानंद, परमात्मा से मिलन का आनंद। इनसे ऊंचा तो कोई आनंद नहीं, और वो आनंद मिल जाए तो बाकी सब जो इंद्रियों के जो अल्पकाल के सुख, जिसको हम आनंद समझकर बैठे हैं, वो सब फीके पड़ जाते हैं। इसीलिए राजयोग क्या है, राजयोग जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण प्रदान करता है, इट्स अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग। तो जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण प्रदान करता है और हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। इसलिए राजयोग आत्मा और परमात्मा की अनुभूति का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। अब इसको अनुभव करने लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि सभी कहते हैं हम तो भगवान को याद करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जप करते हैं, तप, हवन, तीर्थ यात्राएं, बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, यहाँ तक भी सब कह देते हैं, लेकिन फिर पूछो तो फिर आपके जीवन में शांति है? कहते बहन जी शांति कहाँ से आएगी, मन तो लगता ही नहीं है, यह भी कह देंगे। तो क्यों नहीं लगता है मन परमात्मा में? जब हम ये सब कुछ करते हैं तो भी मन नहीं लगता है, इसका कारण क्या है? क्योंकि हम परमात्मा के साथ सर्व संबंधों का वर्णन करते हैं, जहां किससे संबंध होता है तो मन जाता है, और हम परमात्मा की जब प्रार्थना करते हैं तो यही कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो मेरे सब कुछ हो, माता पिता बंधु सखा स्वामी सद्गुरु साजन, सब संबंध, कोई एक संबंध की भी कमी नहीं, सब मेरे संबंध ईश्वर के साथ है। और फिर कहते मन नहीं लगता। आज किसी व्यक्ति के साथ एक संबंध भी होता है ना, तो भी मन उसमें कितना लग जाता है, जो हटता नहीं। और भगवान के साथ सब संबंध और मन नहीं लगता, isn't it ironical? तो क्यों नहीं लगता, इसका कारण क्या है? इसके तीन मूल कारण हैं और राजयोग उसका निवारण देता है। सबसे पहला कारण है कि हम स्वयं को नहीं जानते। मेरा संबंध परमात्मा के साथ है, लेकिन मैं कौन? अगर हम कहेंगे ये शरीर, तो ये शरीर का संबंध तो देहधारियों के साथ है, परमात्मा के साथ शरीर का संबंध नहीं है। ये शरीर का संबंध प्रकृति के साथ है, क्योंकि पंच तत्वों से ये शरीर आया है और पंच तत्वों में ही वापस लौटना है। और फिर क्या कहते हैं, जब किसकी मृत्यु होती है तब यही कहते हैं, हे भगवान इनकी आत्मा को शांति देना। वो आत्मा परमात्मा के पास गई, शरीर तो शांत हो गया, मृत्यु माना ही शरीर शांत हो गया ना? जब किसकी मृत्यु होती है तो सीधा नहीं कहते मर गया, इनका देह शांत हो गया, ठंडा हो जाता है ना, तो कहते शांत हो गया। पर आत्मा की याद आती है उस समय, क्योंकि आत्मा का कनेक्शन परमात्मा के साथ है। बच्चा पैदा होता है, कहते भगवान ने दिया, तो भगवान ने क्या दिया? वो शरीर तो नहीं दिया ना, लेकिन आत्मा दी। और कोई मर गया कहेंगे भगवान के पास गया, भगवान का प्यारा हो गया, तो कौन प्यारा हो गया? शरीर तो नहीं, वो तो वहीं पड़ा है। इसलिए खुद को माना, उस आत्मा को नहीं पहचाना, तो मन परमात्मा में कैसे लगेगा? दूसरा, परमात्मा कौन है यही पता नहीं है। इसको हम ईश्वर कहते हैं, भगवान, ओ गॉड, अल्लाह, खुदा, वाहेगुरु, या जिसको भी हम याद करते हैं उसको परमात्मा समझकर याद करते हैं। वो परमात्मा आखिर है कौन? उसका रूप क्या है? उसका गुण क्या है? वो कहाँ है? कैसे हम उनके पास जा सकते हैं, मिल सकते हैं? कुछ पता नहीं है। तो उसकी पहचान भी न होने के कारण मन किसमें लगाए ये भी पता नहीं है, तो भटकता है मन। और तीसरा मूल कारण है कि मन इतना आज मैला हो चुका है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, वैर, दुश्मनी से इतना भरपूर हो गया है। अब उस मैले मन में हम ईश्वर को स्थान देना चाहते हैं, कैसे ठहरेगा? परमात्मा तो परम पवित्र है, वो परम पवित्र हस्ती, और उसको मैली जगह पर स्थान देंगे। जैसे दूध सफेद सफेद है, शुद्ध है, और हम उसको एक गंदे बर्तन में रख दें तो क्या होगा? दूध पीने योग्य तो नहीं होगा। खटाई वाले बर्तन में रख दे, फट जाएगा जैसे उबालेंगे। तो मन में उस ईश्वर की याद तब आएगी जब इतनी स्वच्छता होगी मन में। वो स्वच्छता कैसे लाएं, ये भी राजयोग सिखाता है। तो ये तीन जो कारण है जिसके कारण मन नहीं लगता, उसका निवारण हमें राजयोग देता है। और राजयोग के अंतर्गत भी ये अष्टांग योग है, ये आठ कहेंगे अंग है राजयोग में। राज माना राजा, जो हमें राजा बनाए। तो कैसे बनेंगे राजा? पहले ज्ञान योग है, ज्ञान के आधार पर योग है। ज्ञान हम ईश्वर से मांगते हैं, दुनिया में ज्ञान की कोई कमी नहीं है, फिर भी ईश्वर से ज्ञान क्यों मांगते हैं? कहते ना असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्यु मा अमृतम गमय। हे प्रभु, वो ज्ञान हमें दो जिससे हमारा असत्य नाश हो, सत्य की पहचान हो। तो सत्य क्या है? ज्ञान, उसी को कहा जाता है। तो सत्य अर्थात खुद को पहचानना, ईश्वर को पहचानना, कर्म को पहचानना, समय को पहचानना, जो शाश्वत है, जो कभी मिटते नहीं, उसको पहचानना, वो सत्य ज्ञान है। और वो ज्ञान परमात्मा ही देते, इसीलिए हम ईश्वर से ज्ञान मांगते हैं जिससे अज्ञान अंधकार दूर हो, सत्य ज्ञान की प्राप्ति हो। आजकल हम समझते हैं ये गूगल गुरु ही सब कुछ है, उसी से ज्ञान मिलता है, लेकिन गूगल गुरु भी आपको ये ज्ञान नहीं दे सकेगा। ये भगवान ही सतगुरु हमें ज्ञान देता है। तो वो कौन सा ज्ञान है जो परमात्मा हमें ज्ञान देते हैं, जिससे अज्ञान अंधकार दूर होता है। तीसरा, नेत्र हमारा खुल जाता है, ये है ज्ञान योग। और उसको दूसरा सहज योग, सहज रीति से मन हम परमात्मा में लगा सकते, जैसे बच्चा अपने पिता को कैसे याद करता है, कितना सहज भाव से। तो हमारा भी इतना सहज भाव हो जो हम ईश्वर से मन लगा जोड़ मन जोड़ सके। और फिर बुद्धि योग, बुद्धि योग, ये मन योग नहीं है, बुद्धि योग है। बुद्धि मन को दिशा दे और फिर मन उसमें लगे। तो बुद्धि मन को दिशा दे और मन ईश्वर में लगे, और ईश्वर में मन लगाकर कर्म करो, जिसे कोई हम कहते हैं कर्म योग। कर्म योग का मतलब ये नहीं है कर्म से योग, योग माना उसमें बुद्धि लगी हुई है, जुड़ा हुआ है। कर्म योग माना कर्म हाथों से हो पर मन और बुद्धि ईश्वर में हो। इसलिए कर्म योग की बहुत सुंदर परिभाषा गीता में आती है, कर्मणे वाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचनम। कर्म पर तुम्हारा पूर्ण अधिकार है, क्योंकि इंद्रियां आपकी है, आप इन इंद्रियों से कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। फल की चिंता मत करो माना फल ईश्वर पर छोड़ दो, वो जाने, हम अच्छा कर्म करें बस, और कुछ नहीं सोचो। अब उसको हम कहेंगे कर्म योग, पर वो तब होगा जब मन में उसकी याद होगी ना। इसलिए कर्म योग माना कर्म हाथों से और मन और बुद्धि से परमात्मा की याद। बुद्धि मन को ईश्वर की तरफ दिशा देती है, और फिर वही वास्तव में सच्चा भक्ति योग है। भक्ति का मतलब केवल कर्म कांड नहीं, पूजा पाठ नहीं, केवल बाहर का आडंबर नहीं, लेकिन भक्ति का मतलब है प्रेम, ईश्वर से सच्चा प्रेम। और जहां प्रेम होता है वहां तो निस्वार्थ भावना होती है, वहां तो त्याग होता है, वहां तो समर्पणमयता होती है। आज तो भक्ति में स्वार्थ आ गया है, भगवान ये मेरा काम कर दो तो मैं इतना प्रसाद चढ़ाऊंगा, बिजनेस हो गई है, व्यापार हो गया भगवान के साथ। भगवान व्यापार का रूप नहीं है, भगवान तो भावना का भूखा है और प्रेम का प्यासा है। ये व्यापार कहाँ से आ गया आजकल दुनिया में, भगवान के साथ। इसीलिए हम ईश्वर से दूर होते जा रहे हैं। तो सच्चा भक्ति योग माना इतनी लगन हो ईश्वर के साथ, उस समर्पणमय भावना से हम सब कुछ करें, ताकि हम जो भी करें परमात्मा का नाम उसमें रोशन हो, मेरा ना हो, ईश्वर को आगे रखें। और जब ये भक्ति योग होता है तब संन्यास योग। संन्यास योग का मतलब है घर गृहस्थी का संन्यास नहीं, अपने कर्तव्यों का संन्यास नहीं, लेकिन बुराइयों का संन्यास, विकृतियों का संन्यास। और जब इनका संन्यास होता है तो हमारा मन एक बैलेंस स्टेट में आता है, समत्व योग कहते हैं, जिसको गीता में कहा गया स्थित प्रज्ञ अवस्था। ज्ञानी तो आत्मा के लक्षण, मान अपमान निंदा स्तुति जय पराजय सुख दुख सब में समान, और कमल फूल सदृश जीवन, संसार में रहते हुए भी संसार का लेप शेप न लगे, संसार में रहे पर संसार हमारे में न रहे, ये है जीवन जीने की कला। और ये जब कला आ जाती है तो मानव जीवन कितना श्रेष्ठ बन जाता है। अब ये तो सबके लिए आजकल ये भी एक बहुत बड़ा डिस्कशन हो गया है कि योग कौन करे कौन न करे। तो योग तो सबके लिए है, संसार का प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड का हो उसके वो अभ्यास कर सकता है, क्योंकि इसमें केवल अपनी आत्मा की आवाज सुनने की आवश्यकता है। अपनी आत्मा की आवाज सुनो, वो क्या कहती है, क्योंकि बुद्धि मन को दिशा दे, मन इंद्रियों को दिशा दे, ये है अपनी आत्मा की आवाज। और जब हम अपनी आत्मा की आवाज समझ पाते हैं तब मानो हम अपने आप को पहचानते हैं। तो मैं कौन हूं, आज जब हम किसी से ये प्रश्न करते हैं कि आप कौन हैं, तो कितने जवाब मिलते हैं, एक जवाब थोड़ी मिलता है। कोई अपना नाम बताएगा, कोई अपना व्यवसाय बताएगा, कोई धर्म बताएगा, कोई जाति बताएगा, कोई अपना अपनी भाषा बताएगा, कोई अपना देश बताएगा, डिपेंड्स। तो हर एक अपना अपना उत्तर देगा, लेकिन क्या ये सही उत्तर है? क्योंकि सही उत्तर तब माना जाए जब वो जो हम उत्तर दे रहे हैं वो शाश्वत हो, वो अविनाशी हो, वो बदलता ना हो। अभी आज मेरा नाम फलाना है और कल मैंने नाम बदली कर दिया तो दूसरा नाम हो गया, परसों तीसरा नाम हो गया। कई लोग नाम बदलते रहते हैं ना, आज मेरी ये भाषा है, कल मैंने वो भाषा अपना लिया, आज ये देश है, कल दूसरा देश अपना लिया, सिटीजनशिप दूसरे देश की ले ली, तो बदलता रहता है। आज ये व्यवसाय है, कल वो छोड़ के दूसरा ले लिया, तो क्या यही मेरा परिचय है? मेरा परिचय वो है जो दुनिया के आगे भी वही हो और भगवान के आगे भी वही हो, तो वो कौन सा परिचय है? दुनिया के आगे तो हम दिखाते हैं मैं सेठ हूँ, साहूकार हूँ, ये हूँ, वो हूँ, न जाने कितना अभिमान दिखाते हैं, और भगवान के आगे तो बिल्कुल इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्सिटी दिखाते हैं। मैं नीच हूँ, मैं पापी हूँ, मैं दास हूँ, मैं कपटी हूँ, मैं बंदा हूँ, मैं गंदा हूँ, चरणों की धूल हूँ, मिट्टी हूँ और मूर्ख हूँ, न जाने क्या क्या निर्बल, और भगवान के आगे मैं सेठ हूँ, साहूकार हूँ। बताओ तो सत्य परिचय क्या है? क्या मैं सेठ साहूकार हूँ या नीच पापी हूँ? अगर मैं नीच पापी खुद को समझ रहा हूँ, मान लो अगर भगवान के आगे ये कहता हूँ ना, तो कोई मुझे कह भी दे, भूल से भी कह दे, चल पापी कहीं का, तो लड़ना चालू कर देते हैं वहीं पर। तू मुझे पापी कहते हो, क्या मैंने पाप किया? तो पापी तो हम खुद को नहीं समझते है ना, तो कौन हूं मैं? तो फिर कोई कह देगा, सबका सहज उत्तर है, मैं तो मनुष्य हूं। वो तो हम देख ही रहे हैं, आप मनुष्य हैं, तो भी आपसे पूछ रहे हैं आप कौन हैं। पर जब मनुष्य कहते हैं तो मनुष्य केवल हड्डी मांस का पिंजरा तो नहीं है ना, वो तो डेड बॉडी भी तो हड्डी मांस का पिंजरा है, पर उसको मनुष्य थोड़ी कहते हैं। कहते हैं डेड बॉडी को क्या कहेंगे? अस्थियां, ये अर्थी, अर्थी, अर्थी कहते, भाई अर्थी उठाओ, ये नहीं कहते फलाने को उठाओ, फलाने की अर्थी उठाओ। तो अर्थी माना अरथी, जिसमें से रथी चला गया। शरीर तो रथ है और आत्मा उसका रथी है, तो आत्मा रूपी ड्राइवर है। अब गाड़ी में ड्राइवर बैठा ही नहीं है, आप उसको बुलाओ, ड्राइवर टैक्सी टैक्सी आ जाओ, टैक्सी कैसे आएगी? ड्राइवर हो तब तो आए, तो ये सुनने वाली शक्ति, देखने वाली शक्ति, बोलने वाली शक्ति, हर कर्म करने वाली शक्ति, ये शरीर थोड़ी है, ये तो एक साधन है। जैसे ये माइक्रोफोन साधन है, ये अपने आप तो नहीं बोलता है ना, लेकिन इनके द्वारा बोलने वाला कोई और है। वैसे आंखें भी साधन है, खिड़की के समान है, पर इन खिड़कियों से देखने वाला कौन? क्योंकि जो देखेगा वो निर्णय करेगा ये अच्छा है या बुरा है, आंखें तो निर्णय नहीं कर सकती। तो वो मैं कौन? तो वास्तव में इस शरीर के भीतर मैं एक चैतन्य सत्ता, अजर अमर अविनाशी शक्ति हूं, जो देख रही हूं, जो सुन रही हूं, जो बोल रही हूं, जो हाथों से कर्म कर रही हूं। अब मैं नहीं चाहूं मैं न्यारी हो जाऊं। ड्राइवर गाड़ी में बैठा है लेकिन इंजन बंद करके बैठा है, चलो नहीं चलाना है, मालिक है ना, गाड़ी तो उसके कंट्रोल में है। तो मैं आत्मा भी इंद्रियों का उपयोग करूं न करूं ये मेरे हाथ में है, मैं इनका मालिक हूं। लेकिन अगर हम अपने आप को गाड़ी से ही आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये माइक ही मैं हूं, ये कैमरा ही मैं हूं, ये जो हेडफोन लगाते हैं वही मैं हूं, ये तो साधन है, इनको यूज करने वाला मैं साधक हूं, तो कौन हूं मैं? ये हार्डवेयर है, शरीर जो है वो हार्डवेयर है, पर मैं सॉफ्टवेयर हूं। कितना अंतर है दोनों में। भले कंप्यूटर में ही है सारा सॉफ्टवेयर भी, प्रोग्राम सब उसमें है, लेकिन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में बड़ा अंतर है। इसीलिए जब हम कई बार कहते हैं ना, ये ना क्या, कई बार ये कहावत कहते हैं, मैं जो खाता हूं वही मैं हूं, आई एम वॉट आई ईट। लेकिन क्या ये सही है कि मैं वही हूं जो मैं खाता हूं? क्योंकि कई बार लोग बहुत मोटे होते हैं लेकिन अंदर के बड़े हल्के होते हैं, बहुत हल्के होते हैं, सारा दिन हंसते रहते हैं तभी तो मोटे होते हैं। इतने हल्के होते हैं, हंसाते रहते हैं पर मोटे हैं। उनको कहो नाचो तो नाचना शुरू कर देते हैं पर है बड़े मोटे। तो वो हल्के हैं या भारी है, क्या है? और दूसरे देखो इतने दुबले पतले होंगे लेकिन उनको कहो नाचो, ना 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 मेरी अभी मूड नहीं है ठीक। तो हल्का कौन हुआ? जो सचमुच उठ के उस समय नाचे ना, वो हल्का हुआ। और जो ना 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 करता वो भारी है, भले वो शरीर में कितना भी पतला क्यों ना हो। सो यू आर नॉट वॉट यू ईट, यू आर नॉट वॉट यू वेयर। हम जो पहनते हैं वही थोड़ी हम हैं। आप दिन भर कितने कार्य करते उसके लिए अलग अलग आपकी ड्रेसेस होगी, पर आप वही थोड़ी बन गए जो आप पहनते हैं। आप वही नहीं है जो आप करते हैं, नहीं, आप एक कोई मैनेजिंग डायरेक्टर होगा पर घर में देखो वो बर्तन भी मांज रहा है, बच्चे को भी पाल रहा है, ऐसे भी होगा, क्यों नहीं होगा, भले ऑफिस में वो मैनेजिंग डायरेक्टर है। तो यू आर नॉट व्हाट यू ईट और वेयर और डू, बट यू आर व्हाट यू थिंक। आप वो हैं जो आप सोच रहे हैं, सोचते हैं। आप वो हैं जो आप महसूस करते हैं। आप वो हैं जो भावनाएं आपके अंदर है। आप वो हैं जो जैसी आपकी वृत्ति है, आपका विजन है। इसीलिए कहा जाता है ना कि व्हाट यू अट्रैक्ट दैट व्हाट यू थिंक, यू अट्रैक्ट दैट बिकॉज यू रियली फील दैट, यू बिकम दैट। तो वो मैं हूं, वो मैं कौन, उसको समझना माना खुद को समझना, जिसको हम आत्मा कहते हैं। और आत्मा शरीर से निकल गई तो ये डेड बॉडी हो जाता है। किस बहुत अच्छा कंप्यूटर, महंगा कंप्यूटर, हार्डवेयर तो बहुत है लेकिन सॉफ्टवेयर है ही नहीं, सो वो कंप्यूटर किस काम का। तो मैं आत्मा जो बीइंग पार्ट हूं, ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन इज ह्यूमस, ये मिट्टी है, पंच तत्व, पर जो स्पिरिचुअल पार्ट है वो मैं हूं, क्योंकि मैं वो आत्मा हूं। और आत्मा क्या है हम भेंट भी करें तो समझ में और सहज आ जाएगा। जैसे एक ड्राइवर किसी गाड़ी में, एक हीरा किसी डिब्बी में, एक दीपक आ किसी झोपड़ी में, एक मूर्ति किसी मंदिर में, रथी किसी रथ में, और एक अभिनेता जिसने वस्त्र धारण किए हैं उस अभिनय को करने के लिए, ये दोनों अलग अलग चीज है। तो जब इस अंतर को हम समझ जाते हैं तो हम अपने स्वरूप को पहचान सकते हैं कि मैं आध्यात्मिक शक्ति हूं, मैं भौतिक शक्ति नहीं हूं, क्योंकि ये भौतिक शक्ति परिवर्तनशील है। आज बच्चा है, कल युवा होगा, परसों वृद्ध भी होगा, परिवर्तन है, क्षणे क्षणे परिवर्तन शरीर में होता रहता है। हर 10 साल के बाद शरीर की सारी सेल्स, कोशिकाएं सब बदल जाती है, सब बदल जाती है। आप सोच सकते हैं 10 साल के बाद किसी व्यक्ति को देखो, अरे लगेगा अरे इतना बदल गया। और अगर कई बार लगता है नहीं बदला तो आश्चर्य खाते हैं, हम 10 साल के बाद मिले तो भी आप बदले नहीं, ऐसे ही है, क्योंकि परिवर्तन तो आता है ना शरीर में। तो मैं तो वो हूं जो 10 साल पहले भी थी और आज भी वही हूं, पिछले जन्म में भी वही थी, आगे जन्म में भी वही रहूंगी। तो मैं वो हूं जो इस शरीर से पहले भी था, इस शरीर के बाद भी रहेगा, वो मैं हूं। इसीलिए उस मैं को पहचानना है जो अविनाशी है, जो अनादि है, जो सचेतन है, जो अपरिवर्तनशील है, जो हवा से सूखता नहीं, पानी से गीला होता नहीं, जो आग से जलता नहीं, जो तलवार से कटता नहीं, वो मैं हूं। जो प्रकृति के स्पर्श से परिवर्तित नहीं होता है, शरीर तो बहुत परिवर्तित हो जाता है, तो मैं वो शक्ति हूं। इसीलिए मैं को पहचानना है। तो कई बार हम कहते हैं ठीक है मैं आत्मा हूं, ऐसे मान लेते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं मानते, सब मानते हैं, लेकिन भाषा क्या प्रयोग करते हैं, मेरे अंदर एक आत्मा है, तो कहेंगे ठीक है ना मेरे अंदर एक आत्मा है, या तो कह देंगे मेरे शरीर में मेरी आत्मा है। अब मेरे अंदर एक आत्मा का मतलब है मैं शरीर हूं और मेरे अंदर एक आत्मा है। जैसे मेरे अंदर पेट है, मेरे अंदर लिवर है, मेरे अंदर ये है, वो चीज तो अलग चीज है ना। तो मेरे अंदर एक आत्मा है, फिर कह देंगे मेरे शरीर में मेरी आत्मा है, माना शरीर आत्मा दोनों अलग हो गया और मैं कोई तीसरी चीज हूं, इफ यू थिंक ऑफ ग्रामर। और तीसरा वाक्य है मेरे शरीर में मैं एक आत्मा हूं, तो सही वाक्य कौन सा है, कौन सा है बताइए, पहला, दूसरा या तीसरा? तीसरा। अब देखिए, हाँ तीसरा का अभी समझना है कि मेरे शरीर में मैं एक आत्मा हूं। अब इसको कैसे हम समझे, क्योंकि मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा सब कर्म करती हूं। तो कैसे करती हूं कर्म, पहले मन में सोच चलता है, अवश्य चलता है। तो मन में जो सोच चलता है ये आत्मा की शक्ति है, ये सॉफ्टवेयर है। फिर बुद्धि चलती है, सही है या गलत है, सही है तो एक्सेप्ट करेंगे, गलत है तो रिजेक्ट करेंगे। और फिर आत्मा इस शरीर के इंद्रियों द्वारा कर्म करते, जिसको हम पर्सनालिटी ट्रेट्स या सब कॉन्शियसनेस या संस्कार कहते हैं, और यही संस्कार आत्मा अपने साथ ले जाती है। इसलिए जब कोई व्यक्ति मरता है तो क्या कहते हैं, कहते अपना संस्कार ले गया, अपना कर्म ले गया। वो कर्म संस्कार के रूप में जैसे सीढ़ी में भर गए, वो निहित है उसमें, और उसी अनुसार फिर से जन्म लिया। तो कहा जाएगा बच्चा पैदा हुआ तो अपना भाग्य लेकर के आया, वो भाग्य लेकर आया माना वो आत्मा जो पूर्व जन्म से संस्कार लेकर गई, वो कर्म के रूप में संस्कार बने और वो संस्कार भाग्य के रूप में फिर आगे आया। तो ये सब आत्मा की शक्ति है। अब मन क्या चीज है, हाउ विल यू डिफाइन माइंड? आज मन की डेफिनेशन को भी मनुष्य नहीं समझते, कई समझते हैं मन तो प्राकृतिक है। अब किसी न्यूरोसर्जन से आप पूछिए मन का लोकेशन ब्रेन में कहाँ है, वो कभी नहीं बता पाएंगे लोकेशन मन का, क्योंकि ये ब्रेन की चीज नहीं है, ये आत्मा की शक्ति है, ये आपकी विचार शक्ति है, जो ब्रेन के माध्यम से जरूर मन सोचता है, आत्मा सोचती है, मन एक ब्रिज की तरह है बिटवीन सोल एंड बॉडी, जैसे ब्रिज दो को जोड़ती है, तो शरीर का असर आत्मा पर पड़ता, आत्मा का असर शरीर पर पड़ता है मन के द्वारा, वो ब्रिज का काम करती है। तो सोचना, चिंतन करना, कल्पना करना, भावनाएं लाना, इसलिए एजुकेशन इज पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। तो मन ह्यूमन रिसोर्स है। आज कितने संसाधन है दुनिया में, बहुत रिसोर्सेज हैं, लेकिन मन सबसे ऊंचा, हाईएस्ट, द ग्रेटेस्ट ह्यूमन रिसोर्स है। इसलिए मन को पहचानना, माना आपने अपने आप को भी पहचान लिया। तो मन क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति, लेकिन इसे बहुत कम पहचाना गया है और इसका कितना दुरुपयोग हो रहा है, कितना वेस्ट हो रहा है। जैसे हम संसाधनों के लिए कहते हैं ना, वेस्ट हो रहे हैं, इसीलिए उसको बचाने के लिए सोलर एनर्जी, विंड मिल्स, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, ये सब जो इंद्रियों की एनर्जीज हम यूज, तत्वों की एनर्जीज यूज करते हैं ताकि हम बिजली को जमा कर सके और वो सफल कर सके, वो एनर्जीज जो वेस्ट हो रही है प्रकृति की, तो मन भी बहुत बड़ी एनर्जी है। हम अपने अंदर देखिए हम कितना वेस्ट करते हैं उस मन की एनर्जी को। इसलिए यदि मन की ऊर्जा को सही दिशा दी जाए तो जीवन का संचालन भी सही हो सकेगा। तो सही दिशा देने के लिए इनसे ऊंची जो शक्ति है बुद्धि। इसीलिए कई वैसे बच्चे नालायक होते हैं तो माँ बाप क्या कहते हैं, हे भगवान इनको सद्बुद्धि दो, कहते हैं ना, भगवान से प्रार्थना करते हैं इनको सद्बुद्धि मिले। बुद्धि तो है लेकिन उल्टी बुद्धि है। तो सद्बुद्धि, सद्बुद्धि, सद विवेक किसको कहा जाता है? सद विवेक माना कि निर्णय करने की सही शक्ति। जैसे एक सीव है, छन्नी, हमको चाय पीनी है, चाय उबल रही है, पर जब चाय हम कप में डालेंगे तो पत्ती ऊपर रह जाएगी। छन्नी में यह विशेषता है कि पत्ती चाय के साथ छनेगी नहीं, वो ऊपर रह गई। इट कैन डिफरेंशिएट, और जैसे डिफरेंशिएट किया तो ऑटोमेटिकली उसको रिजेक्ट किया। और फिर हम बुद्धि को एक तराजू से भी भेंट करते हैं, न्याय की देवी, आप न्यायालयों में देखेंगे कोर्ट्स के बाहर न्याय की देवी है, उस पर आंख पर पट्टी बंधी हुई है, क्योंकि ये आंखें धोखा दे सकती है। तो इसीलिए न्याय तब होगा जब पक्षपात रहित है। तो इसीलिए तीन चीजें होती है एक तराजू में, एक होती है डंडी, सीधी नीगल, वो सुई, वो सीधी नीगल क्या हमें संकेत देती है? एकाग्रता का, वो एकदम एकाग्र होनी चाहिए। और फिर जो सीधी डंडी है हॉरिजॉन्टल, ये पक्षपात वृत्ति रूपी डंडी है, पक्षपात रहित। और जीवन रूपी जो मूल्य है जीवन, वो उसका वजन है, क्योंकि एक तरफ वजन है और दूसरी तरफ चीज जो हम वजन करना चाहते हैं। तो हम किसको वजन दें, वॉट टू गिव इम्पोर्टेंस, तो हम मूल्यों को इम्पोर्टेंस दें, ये बुद्धि का काम है मूल्यों को इम्पोर्टेंस देना। और जीवन में अगर मूल्य है तो कहा जाता है जीवन का मूल्य है। अगर जीवन में मूल्य नहीं है तो जीवन का भी मूल्य नहीं है, जीवन बेकार है। तो कैसे मन रूपी कांटा एकाग्र हो, बुद्धि रूपी डंडी पक्षपात रहित हो, अनबायस्ड हो, तभी सही निर्णय दे सकते हैं और मूल्यों को हम वजन दें। तभी तो जज ऐसा ही न्याय देता है, वो मूल्यों को वजन देता है। और इसीलिए जज को नेक्स्ट टू गॉड कहा जाता है, क्योंकि परमात्मा के लिए भी क्या कहते हैं, ईश्वर के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। तो अंधेर नहीं है माना अगर किसके जीवन में मूल्य नहीं है तो उसका भी मूल्य नहीं है, क्योंकि मूल्य बिना जीवन तो अंधकारमय है। इसीलिए परमात्मा हमें कहते हैं बुद्धि द्वारा मन को दिशा दो ईश्वर की तरफ, तो हमारे कर्म जो होंगे वो श्रेष्ठ होंगे, क्योंकि जो हमारे ओरिजिनल संस्कार है ना वो बहुत शुद्ध है। इसीलिए कहा जाता है आत्मा बहुत शुद्ध है, और जब भी हम कोई गलत कर्म करना चाहते हैं स्वार्थ में आकर के, तो कई बार मन खाता है, ऐसे भी कहते हैं यू फील गिल्टी, गिल्टी कॉन्शियसनेस। ये गिल्टी कॉन्शियस फीलिंग्स ही सिद्ध करती है कि मैं वास्तव में ऐसे नहीं हूं। जैसे सफेद वस्त्र हम पहनते हैं, जरा सा दाग लगता है तो बहुत बुरा लगता है। अब किसने काले कपड़े पहने हो तो दाग कितने भी लगे पता भी नहीं चलता है, चलता है क्या? पर सफेद है तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं आत्मा अपने असली संस्कारों में बहुत शुद्ध हूं, बहुत पवित्र हूं, इसीलिए तो कई आत्मा को परमात्मा ही मान लेते हैं। परंतु आत्मा का ओरिजिनल जो स्वरूप है वो बहुत शुद्ध है, लेकिन आत्मा ही इंद्रियों के साथ कर्म में आते आते ये आत्मा पर ही उसका दुष्प्रभाव पड़ गया, हम अपने आप को देह समझने लगे, और परिणाम स्वरूप हम देखते हैं आत्मा पर ही कई नाम पड़ते हैं, पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, धर्म आत्मा, महात्मा, देव आत्मा। ये आत्मा की अलग अलग स्टेजेस है। तो हम तो ओरिजिनली तो देव आत्मा है, परमात्मा की संतान है, सबसे श्रेष्ठ है, हमारे बहुत ऊंचे संस्कार थे, लेकिन धीरे 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 प्रकृति का प्रभाव पड़ते 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 हम आज जो स्थिति देख रहे हैं संसार में, बिल्कुल जैसे पाप आत्मा बन गए। फिर हम परमात्मा को कहते हैं हे भगवान हमारे पाप हरो, आरती में ये कहते ना, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। तो भगवान से हम ये प्रार्थना करते हैं, अब भगवान कहते हैं मेरे साथ योग लगाओ, तो ये विषय विकार पाप सब हट जाएंगे। इसीलिए भगवान के महावाक्य, तू मुझे याद कर तो मैं तेरे सर्व पापों से तुझे मुक्त कर दूंगा। तो भगवान हमें यह श्रीमत दे रहे हैं कि तू मुझे याद कर, पर पहला कदम है पहले अपने आप को पहचानो। इसलिए गीता के अंदर जो सेकंड चैप्टर है सारा आत्मा का ज्ञान है। हे अर्जुन, इनको आत्मा देखो, इनको देह मत देखो। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, न वो जलती है, न कटती है, न सूखती है, ये तो एक चोला है जो आत्मा बदलती है। इसलिए मैं वो आत्मा हूं जो एक चोला छोड़ दूसरा चोला धारण करती हूँ, और जो पूर्व जन्म के संस्कार है वो लेकर जाती हूँ। इसलिए आप देखेंगे इसका प्रमाण है, कई छोटे छोटे बच्चे इतने टैलेंटेड होते हैं, जो बड़ों में भी वो गुण नहीं है वो बच्चों में होते हैं, क्योंकि वो आत्मा पूर्व जन्म से लेकर के आई है। ये संकेत है कि वो ही संस्कार आत्मा अगले जन्म के लिए ले आई है। दूसरा, शरीर से बाहर होने का अनुभव। कई बार किसी का ऑपरेशन होता है और ऑपरेशन होते होते हार्ट बीट बंद हो जाता है, बिल्कुल जैसे क्लिनिकली उसको डेड मानेंगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो जाग जाता है, वो जाग जाता है और वो बताता है कि मैं ऊपर से अपने शरीर को देख रहा था। अब कैसे देख रहा था, आंखें तो शरीर में थी, कैसे देख रहा था? और जो डॉक्टर्स आपस में जो कुछ बातें कर रहे थे वो सुन भी रहा था, उसके परिवार वाले बाहर बैठे होंगे ऑपरेशन थिएटर के, उन तक भी वो पहुंच गया और फिर वापस शरीर में आ गया, वो अपना अनुभव सुनाता है। तो ये कैसे किया, देखा किसने, सुना किसने, और अपने परिवार वालों से वो भावना कैसे जताई? शरीर तो सब वहां डेड पड़ा था, जैसे आंखें पथरा गई थी, कान सब, शरीर डेड, लेकिन फिर भी वो अनुभव कर रहा था। ये आत्मा की शक्ति है। तीसरा है, जिसको आज की मेडिकल साइंस में उसको बहुत मान्यता मिल रही है, PLR, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो साइकिक पेशेंट्स है, साइको सोमेटिक नहीं है, बीमारी कोई नहीं है शरीर की, लेकिन कहेंगे मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मुझे दर्द है दर्द, जबकि कुछ भी नहीं है, वहां डॉक्टर ने इतना परीक्षण किया कुछ भी नहीं है, लेकिन वो फिर भी साइको साइकोलॉजी है उसकी, तो उसको पिछले जन्मों में ले जाते हैं और पिछले जन्मों से पता चलता है कि ये बीमारी कहां से इसके अंदर में घुसी, वो मन में घुसी है, शरीर में नहीं है, और फिर उसको कैसे डिलीट कर लेते हैं, ये सम्मोहन के जरिए, हिप्नोसिस के जरिए। ये भी एक बहुत बड़ी एक विद्या बन गई है मेडिकल साइंस में भी, तो इसीलिए। और भविष्य को याद दिखना, भविष्य कैसे देख सकते हैं, क्योंकि ये ब्रेन में तो मेमोरी है ही नहीं भविष्य की, चलो इस जन्म के पास्ट की है, न पांच जन्मों की मेमोरी इस ब्रेन में है, न फ्यूचर की इस मेमोरी में, इस ब्रेन में कोई मेमोरी है, तो भी कैसे देख सकते हैं, ये आत्मा की शक्ति है, क्योंकि आत्मा तीनों कालों को देख सकती है, ये तीसरा नेत्र काम करता है, ये आत्मा की शक्ति है। अब उसको जब हमने पहचाना, माना खुद को पहचाना, तो मैं कौन हूं और कहां हूं शरीर में, इस बॉडी का जो कंट्रोल रूम है वो मस्तिष्क है, तो जरूर मेरा स्थान मस्तिष्क में ही है, कंट्रोलर कंट्रोल रूम में ही बैठता है और एक जगह बैठ करके पूरे यंत्र को कंट्रोल कर सकता है, इट डजंट हैव टू बी एवरीवेयर। तो मैं आत्मा कहाँ हूं, इस स्थान को आज्ञा चक्र कहते हैं, यहां से आज्ञा आत्मा करती है शरीर की इंद्रियों को, इसको तीसरा नेत्र भी कहते हैं, आत्मा का ये तीसरा नेत्र है, आज्ञा चक्र है। अब कई जो हठ योग करते हैं वो अपने आप को अनेक चक्रों से ऊपर उठाकर आज्ञा चक्र तक आते हैं, हम कहते हैं कि आप आरंभ में ही आज्ञा चक्र पर आ जाओ, शुरू में कैसे, चिंतन से, मैं एक आत्मा हूं, एक ज्योति हूं, प्रकाश पुंज हूं, चमकता हुआ सितारा हूं, अजर अमर अविनाशी हूं, सत्य हूं, चैतन्य हूं, आनंद स्वरूप हूं, शांति स्वरूप हूं, ये मेरा स्वभाव है और इस शरीर की इंद्रियों का मालिक हूं। अब ये जैसे मैंने निश्चय किया, आत्मा को अपने मूल गुण याद आ जाएंगे, माय कोर वैल्यूज, जो जीवन के मूल्य हैं, जिनसे जीवन मूल्यवान बनता है, सबसे पहला गुण है ज्ञान। ज्ञान बाहर से नहीं आता है, ज्ञान अंदर से आता है, बाहर से जो आता है ना वो इंफॉर्मेशन है, वो सूचना है, वो आपका गूगल गुरु है वो आपको सूचनाएं देता है, संसार का इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा उससे, लेकिन ज्ञान अंदर से आता है। जैसे भोजन हम बाहर से लेते हैं लेकिन हजम हो और ब्लड बने वो तो अंदर की चीज है ना, वो तो बाहर की चीज नहीं है। तो इसलिए बॉडी की शक्ति भी जैसे अंदर की चीज है, ये ज्ञान भी एक शक्ति है जो अंदर से आता है। और उसका क्या प्रूफ है, एक छोटे बच्चे को आप सच बोलना सिखाते नहीं हो, झूठ बोलना जरूर सिखा सकते हो, वो सच बोलता है, अपने आप बोलता है, वो झूठ नहीं बोलता छोटा बच्चा, लेकिन उसको झूठ बोलना सिखाया जाता है, वो बाहर से इंफॉर्मेशन दी, बेटा तुम ऐसे बोलना, तुम ऐसे बोलना, ऐसे बोलना सिखा दिया, लेकिन सच अपने आप अंदर से निकलता है, क्योंकि हर आत्मा ज्ञान स्वरूप है, हर आत्मा पवित्र स्वरूप है, शुद्ध विचार मन में अगर लाते हैं कितना अंदर में शांति मिलती है। तो शांति की डेफिनेशन क्या है, शांति माना मन में पवित्र विचार, क्योंकि वही शांति का स्वरूप है। अगर मन में अपवित्र अशुद्ध विचार है, मैले विचार है, गंदे विचार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष के विचार है, तो मन में कभी शांति नहीं आ सकती, कभी नहीं आएगी। तो इसीलिए ज्ञान पवित्रता शांति प्रेम, कबीर ने कहा पोथी पढ़त पढ़त पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़ ले तो वही पंडित है। तो ढाई अक्षर प्रेम का पढ़ना माना बस खुद को पहचान लो, प्रेम मांगा नहीं जाता है, प्रेम दिया जाता है। एक छोटे बच्चे को भी प्रेम देते, फूल से भी प्रेम होता है, मांगते थोड़ी है प्रेम उनसे। तो प्रेम ये आत्मा की शक्ति है और जहां ये चारों गुण हैं वहां आत्मिक सुख है, और जहां ये आत्मिक सुख है वही आनंद है, और जहां ये छह गुण हैं वहां सातवां गुण है मनोबल, जिसको हम शक्ति कहते हैं। वो अंदर से आती, बाहर से नहीं। एक व्यक्ति बहुत मसल मैन होगा लेकिन ही कैन लूज हिज विल पावर इंस्टेंटली। कोई बात उनको बता दी जिससे एकदम वो अपना सारी शारीरिक शक्ति सेकंड में क्षण हो जाती, क्योंकि ये आत्मा की शक्ति है। और ये सात मूल गुण, दे आर योर कोर वैल्यूज, जो हर फील्ड में, हर प्रोफेशन में जरूरी है, चाहे वो फैमिली वैल्यूज कहलाए, प्रोफेशनल वैल्यूज कहलाए, सोशल वैल्यूज कहलाए, ये सारे ये सात मूल गुण हैं, जिसके आधार पर गुणों की माला है, एक पूरा झाड़ है। अब ये गुण कहाँ से आएंगे, ये आपके पास ही है, और कैसे अनुभव होंगे, चिंतन से, जो मेडिटेशन में हम सीखते हैं। आपको भूख लगती है, प्यास लगती है, ऑक्सीजन चाहिए, आप बाहर से लेंगे, लेकिन शांति चाहिए, प्यार चाहिए, खुशी चाहिए, शक्ति चाहिए, ये आपके अंदर है, और ये अनुभव होगा आपकी सोच से। इसीलिए कहते हैं आप जैसा सोचेंगे वैसा ही अनुभव करेंगे। अगर आप ये सोचते हैं मैं बहुत अशांत हूं, तो दुनिया की कोई भी शक्ति वो आपको शांति नहीं दे सकती है। और अगर आप सोचते हैं ओम शांति, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको अशांत नहीं कर सकती है। एक ऐसा महामंत्र है। अब इसी शांति को, शक्ति को पहचानो, ये आपको इतना हल्का बना देंगे, जो आप हल्का होकर के एक एक परी की तरह, एक एंजल की तरह, फरिश्ते की तरह आप ऊंचे हो सकेंगे, आप न्यारे हो सकेंगे। तो इसीलिए ओम शांति आप सबसे कहलवाया। ये कोई मंत्र जाप करने लिए नहीं है, लेकिन इसको समझने का है। ओम शब्द में तीन अक्षर है, अ उम। अगर इसको लिटरली केवल ले, अ उम माना वह हूं मैं, मैं वही हूं, कौन, आत्मा हूं। और कैसी आत्मा हूं, ओम शांति माना मैं वही आत्मा हूं जिसका स्वभाव धर्म शांति है। धर्म किसको कहा जाता है? धर्म रिलीजन का मतलब ये नहीं है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। धर्म का मतलब होता है धारणा, जीवन की धारणा, जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। और क्या है धारणा? शांति, प्रेम, सुख, यही आत्मा का धर्म है। और जब इस धर्म को पहचान लिया, तो फिर इसको और मजबूत बनाने के लिए शांति, ये सारे गुणों को दूसरे रूप में भी देखना होगा कि जब मैं इस संसार में एक मेहमान हूं, तो मैं कहां से आया हूं, मेरा घर कहां है, कहां तेरी मंजिल, कहां ठिकाना। तब ऊपर की ओर देखते हैं। कई बार दुखी होकर भगवान को कहते, हे भगवान मुझे उठा लो इस संसार से, मुझे अपने पास बुलाओ। तो कहां भगवान बुलाए आपको, दुखी होकर कहते हैं ना लोग, क्योंकि ये आत्मा होम सिक हो जाती है। जैसे घर से आप बहुत समय बाहर रहे हैं तो घर बहुत याद आता है, तो आत्मा को भी घर बहुत याद आता है। वो घर है पांच तत्वों से पार, एक अखंड ज्योति का महतत्व है, जिसको निराकारी लोक मूल वतन कहते हैं। परमात्मा को हम त्रिलोकी नाथ कहते हैं, त्रिलोकी नाथ, तीन लोकों का नाथ है वो। तो कौन से तीन लोक हैं? कई समझते हैं ये साकार लोक, भूलोक, आकाश लोक, पाताल लोक आदि आदि, नर्क लोक, स्वर्ग लोक, कई तो सात लोक भी मानते हैं। पर वास्तव में त्रिलोक का मतलब है ये स्थूल दुनिया, ये पंच तत्व, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सब इस एक लोक में है। चांद सितारे सूरज ये सब एक जो प्रकृति है उसके अंतर्गत आते हैं। ये पंच तत्वों के अलावा और कुछ नहीं है, ये साकार दुनिया। लेकिन इसके पार भी कुछ है जो प्रकृति से परे है, उसको हम कहते हैं छठा अखंड ज्योति का एक महतत्व, जिसको ब्रह्म महतत्व कहते हैं। और उसी के बीच एक साक्षात्कार की भी दुनिया है जिनको देवलोक कहते हैं। अब ये अलग विषय है, लेकिन आत्माओं की जो दुनिया है जिसको परलोक, परम धाम, शांति धाम, मुक्ति धाम आदि नाम से याद करते हैं, वो आत्माओं का लोक है। तो हम आत्माएं मन से वहीं चले जाते हैं। मेडिटेशन में हम ऐसे महसूस करते हैं जैसे कि इस पांच तत्वों से पार उस बेहद के महतत्व में विराजमान है, अखंड ज्योति का एक महतत्व, और उसमें मैं एक आत्मा हूँ। जैसे आकाश में सितारे चमकते हैं, मैं आत्मा चमक रहा हूँ, और मेरे चारों ओर जैसे वो सितारे की लाइट उसके चारों ओर होती है, तो मैं आत्मा रूपी सितारा भी अपने चारों ओर प्रकाश फैला रहा हूँ। तो तीन कदम है जिसमें दो कदम आपको अभी बता रहे हैं, तीसरा आपको कल बताएंगे। पहला कदम है इनवर्ड जर्नी, और इनवर्ड जर्नी में कहाँ अपने विचारों को फोकस करना है, यहाँ भ्रकुटि के मध्य में चमकता एक अजब सितारा, और मैं आत्मा इस शरीर की इंद्रियों का मालिक हूँ। जैसे ड्राइवर कार में बैठा अपनी सीट पर और चाबी घुमाई, इंजन को स्टार्ट किया, भी पूरी गाड़ी उनके कंट्रोल में, तो मैं आत्मा यहाँ विराजमान होकर इस इंद्रियों को अपने वश में रखूं। मैं आंखों द्वारा देख रही हूँ, अब नहीं देखना चाहूँ देखते हुए नहीं देखूं, नहीं बोलना चाहूँ नहीं बोलूं, nobody can force me to speak if I don't want to speak। सुनते हुए भी आप कान तो बंद नहीं कर सकते, चलो आंखें बंद की मुंह बंद किया, कान कहाँ तक बंद करेंगे, तो सुनते हुए भी नहीं सुनो। कई बार ऐसे होता है, आप कुछ अंदर में बात सोच रहे हैं और दूसरा व्यक्ति आपसे बात कर रहा है, और थोड़ी देर के बाद वो आपसे प्रश्न पूछ रहा है, आप कहेंगे सॉरी जरा मैं कुछ सोच रहा था, आपने क्या कहा फिर से कहो, क्योंकि उस समय मैं कुछ और सुन रहा था अंदर ही अंदर, कान नहीं सुन रहे थे। तो मैं कौन हूँ, एक आत्मा हूँ, और मेरा जो असली स्थान है वो परम धाम है, पर इस शरीर में, इस शरीर से मैं अलग हूँ, और मेरा मूल स्वभाव शांत है। तो शरीर से अलग, जैसे शरीर पर वस्त्र पहनी है, ये वस्त्र शरीर से अलग है, तो शरीर भी एक वस्त्र है जो मुझ आत्मा से अलग है, और मैं एक सेकंड में डिटैच हो सकती हूँ। जैसे कछुआ अपने इंद्रियों को कैसे सिकोड़ लेता है, वो हार्ड शेल उसका कवच बन जाता है जो उसकी रक्षा करता है, तो मैं आत्मा अपना इस शरीर को एक रक्षा कवच मान करके इसके अंदर विराजमान हो गई। एक दिया जल रहा है, ये भ्रकुटी कहो या कुटिया कहो, मैं यहाँ पर दीपक बन के जगमगा रहा हूँ, इस शरीर का मालिक। और मैं आत्मा शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शुद्ध स्वरूप, ये सब मुझ आत्मा के मूल गुण हैं। फिर एक अपवर्ड जर्नी, इस शरीर रूपी वस्त्र से भी न्यारा हो गया, ये भी यहीं छोड़ दिया, और मैं आत्मा एक सितारा बन के उड़ जाऊं। इसलिए आत्मा को पंछी कहा जाता है, आत्म पंछी। तो आत्म पंछी कैसे उड़े, मन और बुद्धि के पंखों से, और मन और बुद्धि के पंखों से कहाँ उड़े, पांच तत्वों से पार उस छठे महतत्व में, और महसूस करे एक अखंड ज्योति के महतत्व में मैं एक चमकता हुआ सितारा विराजमान। कई बार इंसान दुखी होके भगवान को कहता है, भगवान मुझे उठा लो, हम कहते ऐसे मत कहो भगवान को, जब जाने का समय होगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आत्मा अपने आप उड़ जाएगी, लेकिन अभी मन से जाओ और मन और बुद्धि से वहां चले जाओ, ऐसे महसूस करो अखंड ज्योति के महतत्व में मैं एक सितारा चमक रहा हूं। एक बेहद महत्त्व, जहाँ एकदम निरसंकल्पता है, जहाँ कोई प्रकृति का आकर्षण नहीं है, कोई आवाज नहीं है, एकदम शांत। और उस शांति की स्थिति में अपने आप को पहचानो कि मैं एक आत्मा हूँ, एक ज्योति हूँ, प्रकाश का पुंज हूँ, एक चमकता हुआ सितारा हूँ। मैं आत्मा ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति का स्वरूप हूँ। मैं आत्मा इस भ्रकुटी में विराजमान चमकता सितारा, अब मैं उड़कर अपने परमधाम में आया हूँ, अखंड ज्योति के महतत्व में, जहाँ से मुझे फिर इस सृष्टि मंच पर जाना है। एक्टर हूँ ना मैं, तो मैं इस सृष्टि मंच पर क्यों आया? पार्ट बजाने आया, पार्ट पूरा हुआ, अब मैं वापस जाता हूँ। अब ये ऐसी सुंदर अनुभूति आप उस समय कर सकेंगे, महसूस करेंगे कि आप जो संसार की जो नेगेटिविटी है ना, उस नेगेटिविटी से आप बिल्कुल न्यारे हो जाएंगे। आप उसको देखते हुए भी नहीं देखेंगे, सुनते हुए भी नहीं सुनेंगे, आपकी इंद्रियां आपके कंट्रोल में होगी, क्योंकि आप अपने शरीर के मालिक हो। अब ये जब आपने अनुभव किया, तो आप बैठ करके भी इसको बहुत सुंदर अनुभव कर सकते हो, चलते फिरते भी अनुभव कर सकते हो कि मैं एक आत्मा हूँ, एक ज्योति बिंदु स्वरूप देह से न्यारी शक्ति हूँ, एक चमकता हुआ सितारा हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ, मैं शांत स्वरूप, शुद्ध स्वरूप, प्रेम स्वरूप। और वो सोचते 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 एक स्वरूप बन जाए, लेट इट बिकम पार्ट ऑफ योर एक्सपीरियंस, क्योंकि जैसा सोचेंगे वैसा ही अनुभव करेंगे। तो चलिए अभी इसका हम अभ्यास करते हैं कुछ मिनटों के लिए। सीधा बैठेंगे और ये लाल प्रकाश जो जलेगा, ये हमें संकेत देता है कि अब इस कल इस दुनिया के जो विचार है ना, इनको स्टॉप, एक सेकंड में ब्रेक, एक सिग्नल है कि कुछ समय के लिए जस्ट रिलैक्स। और रिलैक्स होकर के क्या करो, ऐसे अनुभव करो कि मैं इस सारे संसार के आकर्षणों से परे हूँ, और अंदर की एक यात्रा करें। अपने आप से पूछें, तो सीधा बैठेंगे, अगर आपके हाथ में कुछ है होल्ड मत कीजिए, रख दीजिए साइड में, आप बिल्कुल फ्री हो जाए, स्वतंत्र, कुछ भी नहीं चाहिए, इंटरलॉक कर सकते अपनी उंगलियों को। सीधा बैठेंगे, अपने आप से पूछें, आंखें चाहें तो खुली रख सकते हैं और सामने से आप वाइब्रेशन ले सकते हैं। अपने आप से पूछें, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, क्यों आया हूं, क्या है मेरा लक्ष्य, मुझे कहां जाना है। अब अपने आप को ही उत्तर दें, मैं एक आत्मा हूं, एक ज्योति हूं, प्रकाश पुंज हूं, एक जलता हुआ चिराग हूं, जो भ्रकुटि के मध्य विराजमान हूं। और इस शरीर को प्रकाशित कर रहा हूं, तो अपने विचारों को भ्रकुटी के मध्य फॉरहेड पर केंद्रित करें और महसूस करें ये शरीर कैसे मुझसे अलग है। जिस प्रकार शरीर पर वस्त्र पड़े हैं, उसी प्रकार ये शरीर भी एक वस्त्र के समान है जो मुझ आत्मा ने धारण किया है। मैं आत्मा बहुत हल्की हूँ। पांच तत्वों के आकर्षण से न्यारी हूँ। यह सृष्टि तो एक रंगमंच है जहां मैं आत्मा पाठ बजाने आई हूं। अब मुझ आत्मा को वापिस जाना है, अपने धाम, शांति धाम। मुक्ति धाम, परम धाम, निर्वाण धाम, जो मुझ आत्मा का अपना ही घर है। मन और बुद्धि के द्वारा आत्मा उस धाम में पहुंच जाए। पांच तत्वों से परे सूर्य चांद सितारों के प्रकाश से भी दूर उस शांति के धाम में, जहां मैं आत्मा एकदम शांत हूं। मेरे चारों ओर शांति ही शांति है, प्रकाश ही प्रकाश है। अति निरसंकल्पता है, मैं आत्मा अपने मूल स्वभाव को याद करूं। मैं कितनी शुद्ध आत्मा हूं। पवित्र आत्मा हूं, शांत स्वरूप आत्मा हूं, शांति धाम का वासी हूं, शांत हूँ, शांत हूँ, शांत हूँ, और हो जाए शांत। शांति की शक्ति स्वयं में भर ले। शांति की शक्ति भरकर फिर वापस लौटे आवाज की दुनिया में, पंच तत्वों के शरीर में, कर्म क्षेत्र पर, और फिर से शरीर के द्वारा कर्म करें, लेकिन एक नई सोच के साथ कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। और उसी स्थिति में मन शांत रहे और उसी शांति से वचन बोले, शांति से कर्म करें, शांति से व्यवहार करें, तो ये इंद्रियां आपके वश में रहेगी। आपका व्यवहार भी श्रेष्ठ होगा और यह जीवन सार्थक बन जाएगा और जन्म जन्म सफल हो जाएंगे। ये है राजयोग की कमाल। ओम शांति शांति।